हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रितेश के फोन की स्क्रीन को देखकर डॉक्टर रश्मि की आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने डॉक्टर रश्मि की इकलौती बेटी को किसी ने किडनैप कर रखा था, उसे चेयर से बांध रखा था और वो बुरी तरह रो रही थी। पल भर में रश्मि का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से रितेश के हाथ से उसका फोन लेते हुए लगभग रोते हुए आवाज में कहा, ये सब क्या है? क्या दुश्मनी है मेरी बेटी की तुम लोगों से? उसे क्यों पकड़ा है? वो तो अभी बहुत मासूम है। उसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जिग्नेश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, हम उसे छोड़ देंगे, वैसे भी हमें उससे कोई काम नहीं है। फिलहाल के लिए तुम बताओ, क्या तुम रूहान का इलाज कर रही हो या नहीं? क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि हम लोगों को कोई गलतफहमी है और तुम अपना इरादा नहीं बदलने वाली? रश्मि ने डरते हुए अपना सलाइवा निगला और फिर भरे गले से कहा, हाँ, मैं उसका इलाज कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी तक अपने ट्रॉमा से उभर नहीं पाया है। रह रहकर उसे माइग्रेन का दर्द उठने लगता है और वो अपने अतीत में चला जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उससे दूर हो रही है, और इन सब की वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। और मैं उस बच्चे को इतनी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ, इसके लिए मैं उसका ट्रीटमेंट करती हूँ हर 2 महीने के गैप से, और अगर उसे पहले ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास पहले भी आ जाता है। रितेश ने अपना फ़ोन रश्मि के हाथ से लेते हुए कहा, और वो तब भी आ जाता है जब तुम उसे बुलाती हो। जिग्नेश ने भी रितेश का साथ देते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी बहुत इज्जत करता है वो, तुम्हारा हर ऑर्डर फॉलो करता है। रश्मि ने एक बार रितेश को देखा और फिर जिग्नेश को, और फिर पलकें झुकाते हुए बोली, हाँ, अगर मैं उसे बुलाती हूँ तो वो उस दिन नहीं तो 1-2 दिन में ज़रूर मेरे पास आ जाता है। रितेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अभी हमारा प्लान ये है कि तुम्हारा इलाज वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रूहान को कोई बीमारी होनी चाहिए जिसका इलाज तुम करो, और अब वो बीमारी कैसे होगी ये सब कुछ हम तुम पर छोड़ते हैं। रितेश की ये बात सुनकर रश्मि की आंखें फैल गईं। उसने गुस्से में कहा, आप लोग क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? मैं उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। जिग्नेश आराम से उस कुर्सी पर लीन होते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम तो इतनी अच्छी औरत हो, कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो, और मैं तो तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा ये करने के लिए। जिग्नेश की बातें सुनकर रश्मि की आंखों में कन्फ्यूजन आया ही था कि जिग्नेश ने अपनी बात आगे पूरी करते हुए कहा, तुम तो इतनी बलिदानी हो कि रूहान की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम अपनी मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी भी दाव पर लगा दोगी और उसे हमारे हाथों मरने दोगी। रश्मि ने डरते हुए ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, उसके अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसे खो नहीं सकती हूँ। रितेश ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, तो उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। उसकी माइग्रेन की दवाइयाँ पहले से बदली हुई हैं, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है उसने वो दवाइयाँ लेनी बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से उसका अग्रेशन, उसका गुस्सा, उसका पागलपन सब कुछ खत्म सा हो गया है। वो अब अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करता है और उसने नशे को हाथ लगाना भी बंद कर दिया है, और ये सब कुछ हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर वो समझदार हो जाएगा तो हमारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। रितेश जैसे जैसे बोल रहा था, रश्मि की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे सबसे पहले बुरा लग रहा था अपनी बेटी के लिए, जो मात्र 18 साल की है, एक नॉर्मल सी कॉलेज जाने वाली लड़की। दूसरा, रूहान के लिए, वो भी अभी बच्चों जैसा ही है। उसके साथ ये लोग हैवान से भी बदतर सलूक करना चाहते हैं। और उसके बाद अपने दोस्त नमन के लिए, जिसके मरने के बाद भी उसका काम उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल किसी साये की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था और अब उसके फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। जिग्नेश ने तेज़ आवाज़ में कहा, डॉक्टर, ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें तुम्हारा फैसला जानना है, और अगर तुम्हारा फैसला ना भी होगा तो हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी तुम्हारी बेटी की जान लेने में। ये सुनकर रश्मि ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, मैं रूहान को ऐसी मेडिसिन दे दूंगी जिससे उसका अग्रेशन बढ़ जाएगा। ये सुनकर रितेश और जिग्नेश दोनों के चेहरों पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। उन्होंने रश्मि के सामने से उठते हुए कहा, तुम तो काफ़ी समझदार निकली, हमें तो लगा था और पता नहीं क्या क्या तिगड़म करने पड़ेंगे तुम्हें इस चीज़ के लिए मनाने के लिए, लेकिन तुम तो बड़ी आसानी से मान गई। चलो ठीक है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत रहेगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास ही, और अगर तुमने बेवजह उसे ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म किया या अपनी तरफ से कोई भी चालाकी की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, तो इस बात का खास कर ख्याल रखना, और हम दोनों कैसे आदमी हैं ये तो तुम्हें अच्छे से पता है, इसके लिए तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, तभी तो तुम अब तक अपनी दोस्त की मौत पर खामोश हो।
अब हमारे अंदर का शैतान जो सोया हुआ है उसे वैसे ही रहने दो, तो उसे जगाने के लिए फालतू में मेहनत मत करना। रश्मि ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद रितेश और जिग्नेश डेविल स्माइल के साथ तेज कदमों से उसके केबिन से बाहर चले गए और रश्मि भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए ही अपने दोनों हाथों से मुंह पकड़ लिया और फिर सुबह उठते हुए बोली, इन सब ने मेरी बच्ची की क्या गलती थी, उसे किस बात की सजा मिल रही है? ना मैं एक अच्छी दोस्त बन पाई, ना अच्छी पत्नी, और अब मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाऊंगी। मेरी वजह से वो कितनी सारी मुसीबतें झेलने वाली है। ये बोलते वक्त रश्मि को बार बार अपनी बेटी का हंसता खेलता हुआ चेहरा याद आ रहा था। रश्मि की बेटी रूही बहुत ही मासूम सी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ अनाही फ्रेश होकर ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर फिलहाल मिरर के सामने खड़ी थी। रूहान बेड पर बैठा अपने होंठ चबाते हुए उसे देख रहा था। अनाही के ब्लाउज का बैक साइड का गला बहुत ज्यादा डीप था, जिसकी वजह से अनाही की बैक दिख रही थी, और उसे देखकर रूहान का गला सूख रहा था। वो बार बार अपनी नजरें फेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम ही हो रही थीं, और हर बार फिर से उसकी नजर अनाही की खूबसूरत बैक पर ही जा रही थी। अनाही ने अपने होठों पर लिप बाम लगाई और फिर अपने माथे पर एक बिंदी चिपकाते हुए धीरे से बोली, रूहान जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? रूहान धीरे से उठा और फिर उसके पास आकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो गया, इतना पीछे कि अब उसकी गर्म सांसें अनाही की गर्दन पर गिर रही थी, जिससे अनाही ने थोड़ा सिहरते हुए कहा, कुछ बात है क्या? रूहान ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से अपने दोनों हाथों से अनाही को पीछे से गले लगा लिया और फिर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाते हुए बोला, हाँ, परेशानी तो बहुत है, पर आपसे कैसे कहूँ, इसके लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। उसके छूने भर से अनाही के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए धीरे से कहा, ऐसी भी कौन सी परेशानी है जिसके लिए आपके पास शब्द नहीं है?
ये सब कुछ अनाही भारी सांसों के साथ बोल रही थी, जिसे महसूस कर रूहान ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके माथे पर चिपकी बिंदी को सही से माथे के बीचों बीच लगाते हुए उसके पास झुककर कहा, आपको देखकर मेरे दिल में बहुत हलचल सी हो रही है, लेकिन अभी आपका मूड खराब है। आप सोचोगे मैं हर वक्त ऐसी ही चीज से सोचता हूँ कि आपके बारे में, लेकिन क्या करूँ, जब भी मैं आपको देखता हूँ मेरे दिल में अच्छे ख्याल नहीं आते हैं, सिर्फ गंदे ख्याल आते हैं। आपके पास इसका कोई इलाज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इतना बोलते बोलते रूहान की नजरें अनाही के होठों पर जा टिकी थीं और अनाही भी खुद को संभालते हुए रूहान के होठों को ही देख रही थी। उसने फिर रूहान के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें नीचे जाना चाहिए, मम्मी जी बुला रही हैं, उन्हें हमसे शायद कोई जरूरी काम हो।